कल्पतरुभ्यश्च दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे
हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रति रविवार ये इस प्रीति भोज कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है और बहुत ही पवित्र दिन है एकादशी। और भी कुछ विशेष आज के दिन में वही समय है ये जिसमें सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई थी। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में गए और ठीक उसी समय इस पृथ्वी पर घोर कलयुग का प्रारंभ हो गया। और कलयुग के जब 30 साल बीते तब भाद्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी के दिन परीक्षित महाराज आमरण अनशन व्रत ग्रहण करके गंगा जी के तट पर जाकर उन ऋषि मुनियों की सभा में बैठे थे और उसी समय परम भागवत सुखदेव जी पधारे और नवमी से लेकर पूर्णिमा तक 7 दिन परीक्षित महाराज को गंगा जी के पावन तट पर यह परम पवित्र भागवत की कथा श्रवण कराई। तो उस समय के अनुसार आज शायद 3रा दिन है, दसवीं तो नहीं है, नवमी के बाद एकादशी। और एकादशी के बाद कल द्वादशी है जिसको विजया द्वादशी अथवा वामन द्वादशी कहते हैं, जिस दिन भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। तो सोचा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे उसी कथा को हम भी थोड़ा सुन ले। कथा तो बहुत विस्तार से है पर एक समय की बात है कि जब कश्यप जी अपने आश्रम में पधारे और देखा तो वहाँ पर कुछ प्रसन्नता नहीं थी, आश्रम में एकदम उदास और दुखपूर्ण वातावरण था। और उसकी पत्नी अदिति को देखा तो वह भी एकदम शोक के समुद्र में डूबी हुई थी। तो कश्यप जी ने पूछा कि देवी क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? और तब माता अदिति ने कहा कि हे प्रभु, हमारे शत्रुओं ने हमारे पास से सब कुछ छीन लिया है, हमारा राज्य, हमारा ऐश्वर्य, हमारी कीर्ति, हमारा स्थान, हमारे सुख के जितने भी साधन थे वह सब हमारे शत्रु अर्थात असुरों ने हमारे पास से छीन लिया है। इसलिए आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा स्थान, हमारा राज्य, हमारा ऐश्वर्य हमें फिर से वापस मिल जाए, और तब कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, उसके लिए एक ही आश्रय है, तुम परम पुरुष भगवान वासुदेव का यजन करो, क्योंकि स विधास्यति ते कामान हरिर दिनानुकंपन। भगवान श्री कृष्ण दिनों के ऊपर अत्यंत करुणा करने वाले हैं, और इस संसार में तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला उसके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए हे देवी, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो। क्यों? तो कहते हैं कि अमोघा भगवत भक्ति न इतर इति मतिर मम। इस संसार में भगवान की भक्ति कैसी है? अमोघा, अमोघ अर्थात जो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अमोघा भगवत भक्ति न इतर इति मतिर मम, और उसके सिवा जो भी कार्य है वह सब न, अर्थात अमोघ नहीं है, व्यर्थ है। दो जगह पर रामायण में एक जगह पर यह शब्द आया है अमोघ, अमोघ कौशलेंद्र सायक। भगवान श्री राम का बाण अमोघ है, जो एक बार अपने धनुष से छूटा तो अपना कार्य सिद्ध किए बिना वापस नहीं आता। और यहाँ पे भागवत में कश्यप जी कहते हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, कृष्ण की भक्ति अमोघ है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और कौन कहता है? कश्यप जी, जो इस सृष्टि के प्रजापति है। इस संसार में आप जो भी जीव देख रहे हैं वह सब कश्यप जी की संतान है। एक मनुष्य को बात करके जो भी सृष्टि है, देवता, असुर, दानव, पशु, पक्षी, कीट, सर्प, गरुड़ जी इत्यादि जो भी सृष्टि है वह सब कश्यप जी की संतान है। और ऐसे महान प्रजापति और उसका सामर्थ्य कैसा है? तो कथा एक आती है ऐसी कि एक बार यह पृथ्वी पाप के भार से पीड़ित होकर रसातल में जाने लगी, और जब पृथ्वी रसातल में जा रही थी तो उसको रोकने के लिए देवताओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन देवता लोग इस पृथ्वी को डूबने से रोक नहीं पाए और बहुत दुखी हो गए, क्योंकि देवताओं को जब तक यह पृथ्वी पर सत्कर्म, यज्ञ, याग, पूजन इत्यादि सब क्रियाएं नहीं होती है तब तक देवताओं को भोजन नहीं मिलता है, और पृथ्वी चली जाएगी तो क्या होगा। इस बात से दुखी होकर सब देवता लोग भगवान की शरण में गए, भगवान विष्णु की शरण में। और देवताओं का यही सबसे प्लस पॉइंट है कि कुछ भी संकट आने पर सीधे भगवान विष्णु के पास जाते। कोई भी कथा देखिए, और यही उसका प्लस पॉइंट है कि उसको उसके क्या मुसीबत से उसका छुटकारा हो जाता है। हम लोग जब मुसीबत आती है तो संसार में इधर उधर भटकते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन देवता बहुत बुद्धिमान है, सब लोग मिलकर सीधे भगवान विष्णु के पास गए, और जब भगवान को प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रजापति कश्यप जी जो आपके पिताजी है उसके पास जाइए, क्योंकि भगवान का भी एक स्वभाव रहा है, वो हमेशा अपने भक्तों को यश देते हैं, अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाते हैं। इसलिए तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये सब जो खड़े हैं सबको मैंने पहले से मार दिया है, तुम मात्र निमित्त बनो और यशो लभस्व, यश प्राप्त करो, तुम्हें यश दिलाने के लिए, अन्यथा ये सब पहले से ही मेरी दृष्टि से मर चुके हैं। और भगवान रामचंद्र ने दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर रामेश्वर की स्थापना की, तो उसके बारे में लोग कई कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान राम अपने भक्तों में जो श्रेष्ठ है, जो वैष्णव में प्रधान है, ऐसे शिव जी को बढ़ाए, उसको यश देना चाहते थे, इसलिए उसने रामेश्वर की स्थापना की। तो हमेशा भगवान का यही लक्ष्य रहता है, इसलिए आज देवताओं को कश्यप जी के पास भेजा और कश्यप जी ने देवताओं की प्रार्थना को सुनकर हजारों हजारों साल तक इस पृथ्वी को अपनी तपस्या के बल से अपने उरुओं पर धारण कर लिया। विचार कीजिए, सब देवता मिलकर जो पृथ्वी को रोक नहीं सके, उसी पृथ्वी को कश्यप जी ने वो एक दो साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए अपनी जंघाओं पर, अपने उरु के ऊपर धारण कर लिया। और इसीलिए इस पृथ्वी का नाम हुआ उर्वी, उरु के ऊपर धारण करने के कारण उर्वी। तो इतने महान और तेजस्वी कश्यप जी कह रहे, अमोघा भगवत भक्ति न इतर इति मतिर मम। ये कृष्ण की भक्ति अमोघ है, यह मेरा निश्चित मत है। और भगवान ने तो भगवद गीता में कहा ही है अर्जुन से कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महति भयात्। मेरी कोई थोड़ी सी, स्वल्पम थोड़ी सी भक्ति करता है तो वह भक्ति उस जीव को बड़े से बड़े संकट से बचा लेती है। और प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं अजामिल, अजामिल ने कितनी भक्ति की थी, एक बार नारायण नाम उच्चारण किया था, वह भी गलती से, लेकिन इतनी भक्ति करने मात्र से वो कितने बड़े संकट से बच गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए थे, उतना ही नहीं, अपने पास से अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उसने बांध दिया था, लेकिन जैसे ही नारायण शब्द उसके मुख से निकला, अजामिल के मुख से, तो भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए और उस यमदूत के पाशों को काट कर उसे छुड़ाया। तो सोचिए, इतनी सी भक्ति करने के कारण अजामिल कितने बड़े भय से, कितने बड़े संकट से बच गया। इसलिए कहते कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ी सी अगर कोई भक्ति करता है तो वह बड़े से बड़े भय से बच जाता है। इसलिए हे देवी, तुम भी कृष्ण की भक्ति करो, जिससे तुम्हारे मन में जो भी कामना है, तुम्हारे पुत्रों को राज्य देना है या तो और भी जो कुछ भी कामना है, वह सब कामना भगवान कृष्ण तुम्हारी पूर्ण करेंगे। और यही बात श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने भी बताई है कि अगर संसार की किसी भी वस्तु की कामना हो तो एक ही आधार है, भक्ति करो। पहले तो सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, जिसको धन की कामना है उसको कुबेर जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए, सुखी दाम्पत्य जीवन चाहिए तो पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए, स्वस्थ शरीर के लिए अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए, शिल्प कला के लिए विश्वकर्मा की उपासना करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार की अलग अलग वस्तुओं की कामना के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पूजन की विधि बताई। और स्वाभाविक है, इस संसार में भी हम देखते हैं कि अलग अलग वस्तु लेने के लिए अलग अलग दुकानों में जाना पड़ता है। आपको कपड़े चाहिए तो उसके लिए दुकान अलग है, फल लेना है तो उसकी दुकान अलग है, शाक भाजी के लिए दुकान अलग है, अन्न चाहिए गेहूं चावल उसकी दुकान अलग है, और जो भी जरूरी वस्तु, दवाई लेनी है तो उसकी दुकान अलग है, फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रिक वस्तु के लिए, सब अलग अलग जगह पर जाकर खरीदना पड़ता है। तो ऐसे ही संसार के अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना की विधि सुखदेव जी ने बताई। तो मानो पूछा जाए सुखदेव जी को कि आजकल तो बम्बई जैसे बड़े बड़े सिटियों में मॉल बन गए हैं बड़े बड़े, और एक ही जगह पर जाने से सब वस्तु प्राप्त हो जाती है, ए टू जेड, वहां पर आप जाएंगे तो सब जो भी चाहिए आपको, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक वस्तुएं, गोल्ड, ज्वेलरी, सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट, कुछ भी वस्तु बाकी नहीं रहेगी, सब वस्तु मोल से मिल जाती है। तो क्या सुखदेव जी आपके पास भी कोई ऐसा आध्यात्मिक कोई वस्तु है, कोई ऐसी विधि है कि वह एक विधि करने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाए? जैसे यह मोल है, तो आपके पास क्या कोई ऐसा आध्यात्मिक मोल है कि जिसको एक को करने से सब चीज प्राप्त हो जाए? तब सुखदेव जी कहते है ना, क्या? तो कहते अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार जी। अगर किसी के अंदर अकाम अर्थात बिल्कुल निष्काम भाव है, संसार की किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, अकाम सर्व काम अथवा तो संसार की कुछ भी वस्तु प्राप्त करने की मन में कामना है, कुछ भी वस्तु संसार की चाहिए, और मोक्ष काम अथवा तो इस संसार के बंधन से जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना हो, कुछ भी कामना हो, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बस तीव्र भक्ति पूर्वक उसे भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मॉल की तरह है सब, मात्र तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष कृष्ण की भक्ति करने से सब मिल जाएगा। लेकिन फर्क कितना है जानते हो? इस संसार के जो मॉल है उसमें वस्तुएं खरीदने के लिए संसार का धन चाहिए, और ये जो मॉल है वो संसारी तो है नहीं, दिव्य आध्यात्मिक मॉल, और उसमें कौन सा धन चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे।
इसलिए कश्यप जी कहते हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, हे देवी कृष्ण की भक्ति अमोघ है, तुम उसको करो, तुम्हारे मन में जो भी कामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर कश्यप जी ने उसको एक सुंदर व्रत बताया, पयोव्रत। फाल्गुन मास में प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का यह व्रत है, जिसमें पय अर्थात दो अर्थ होते हैं, पानी और दूध, इन दो के ऊपर रहना होता है और भगवान विष्णु की पूजा करनी रहती है। तो कश्यप जी ने बताया, उसके कहने के अनुसार अदिति माता ने 12 दिन तक अपनी सभी इंद्रियों को मन को वश में करके सावधानी पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक यह पयोव्रत का अनुष्ठान किया और भक्ति और भाव पूर्वक भगवान का पूजन किया, और इसका फल ऐसा हुआ कि 12वें दिन साक्षात भगवान विष्णु अदिति माता के सामने खड़े थे इस व्रत के प्रभाव से। और अदिति माता ने जब देखा भगवान को तो एकदम प्रसन्न हो गए, और उसकी सुंदरता से सुखदेव जी कहते कि ऐसा लगता था जैसे अपनी आंखों से भगवान को पी जाएगी अदिति, इस तरह भगवान के सौंदर्य को देख रही थी। और भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या कामना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्रों को जो उसका राज्य चला गया है वह वापस मिल जाए, उसका धन उसका ऐश्वर्य उसकी सभी चीज़ें और सुख संपत्ति सब उसे वापस मिल जाए, और भी तुम्हारे मन में कामना है कि तुम्हारे शत्रु युद्ध में सब मारे जाए और उनकी पत्नियां उनके शव के पास बैठकर रोए, इस दृश्य को तुम देखना चाहती हो। लेकिन हे देवी, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बलि मेरा भक्त है और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, न मैं भक्त प्रणश्यति। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन के पास घोषणा करवाई, क्यों? महाराज जी बता रहे थे अगले संडे को कि बड़े बड़े कंपनी वाले जाहिरात अपनी एडवर्टाइज करवाने के लिए बड़े लोगों को रखते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हो या सिनेमा वाले हो, उसको अपनी कंपनी की एडवर्टाइज करवाने के लिए रखते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने भी बड़े अर्जुन को चुना अपनी एडवर्टाइज करवाने के लिए कि तुम घोषणा करो ये अर्जुन के न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तब अदिति माता पूछती है कि तो क्या प्रभु मेरे पुत्र देवता भी आपके भक्त नहीं है? तो भगवान कहते है वह भक्त, लेकिन जब तक दुख के दिन है तब तक जब जब उसके पास स्वर्ग आता है तो उसकी सभाओं में अप्सराओं का नृत्य होता है, सोमरस के प्याले उठते हैं और भोग करते हैं। लेकिन देखो यह बलि इतना बड़ा ऐश्वर्य है, तीनों लोक का राजा है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा है और वह भी एक दो नहीं 99 यज्ञ कर चुका है। यही फर्क है तुम्हारे पुत्रों में और इस बलि में। लेकिन हे देवी, तुमने मेरी भक्ति की है इसलिए मेरा पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ममार्चनम नार्हति गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं होता, इसलिए तुम्हें भी तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हारा कार्य करूंगा, लेकिन तुम इस बात को किसी को बताना नहीं। इतना कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए और अदिति माता प्रेम पूर्वक अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगी और भगवान कश्यप जी के तेज से अदिति जी के अंदर अंतःकरण में प्रविष्ट हुए और बाद में धीरे धीरे समय जाते जाते गर्भकाल पूर्ण हुआ। तो ठीक भाद्र मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। दिन का ठीक मध्याह्न का समय था, 12 बजे का समय था और उसी समय भगवान अदिति माता के गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जब अदिति माता ने देखा यह दिव्य रूप को तो कश्यप जी ने और अदिति जी ने दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति की और सारे देवता ब्रह्मा जी इत्यादि भी वहां पर प्रकट हो गए। और फिर उन सब के देखते देखते ही भगवान चतुर्भुज रूप में से एक बटु बालक बन गए, क्योंकि एकदम छोटा बालक बनने का तो समय नहीं है। हर बार जैसे गोद में खेलने वाला बालक बन जाते हैं, ऐसा करेंगे फिर थोड़ा बड़ा होकर बलि के यज्ञ में जाएंगे तब तक तो उसका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, इसलिए एकदम छोटे नहीं बने लेकिन थोड़ा बड़े बालक के रूप में हो गए। और उसी समय जैसे बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है ब्राह्मण बालक का, तो स्वामन देव का भी यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए सबसे पहले बृहस्पति जी ने उसको यज्ञोपवीत पहनाया। अदिति माता ने कौपिन दिया, कश्यप जी ने मेखला दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, चंद्रदेव ने दंड दिया, आकाश ने सुंदर छत्र दिया और सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र दिया। इस तरह सब लोगों ने अपने अपने पास जो भी था, पृथ्वी माता ने कृष्ण मृग चर्म दिया, तो सब विधि हो गई, यज्ञ भी किया छोटा सा, तो वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और अब जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको दीक्षा मांगनी पड़ती है, सब भक्त लोग भी जब दीक्षा होती है तो क्या करना पड़ता है, भिक्षा मांगते हैं। ऐसे ही यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भी दीक्षा मांगनी होती है। भगवान सोच रहे कि भिक्षा मांगनी है तो छोटा यजमान क्यों पकड़े, बड़ा ही यजमान ढूंढते हैं। तो तब तक सुना कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में, और नर्मदा भी पृथ्वी पर जो गुजरात में है वह नहीं, स्वर्ग में जो नर्मदा है उसके तट पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान वहां पर जाने के लिए सुंदर हाथ में छत्र लिया है, एक हाथ में कमंडलू है, पार्श्व भाग में आसन दबाया है और छोटे छोटे पैरों से विष्णु वामन थैने चालिया जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब वामन देव चल रहे थे तो भारेण गाम सन नमयन पदे पदे, उसके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पद पद पर झुक रही थी। क्यों? भार से नहीं, लेकिन आज अपने प्रियतम भगवान के चरण के स्पर्श से पृथ्वी माता इतनी प्रसन्न थी, पुलकित थी कि एक एक पद पर झुक रही थी। और ऐसे ही जब वामन देव वहां पर पहुंचे नजदीक, तो यज्ञ मंडप में जो भी थे उन सब लोगों ने देखा कि अरे इतना तेजस्वी कौन आ रहा है, तो सोचने लगे कि लगता है कि सूर्यदेव यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कोई कहते नहीं नहीं अग्निदेव आ रहे हैं। फिर सोचने लगे कि नहीं, सूर्य और अग्नि का जो तेज है वह तो दाह गर्मी प्रकट करने वाला है, लेकिन इसमें से जो तेज निकल रहा है वह तो एकदम शीतलता प्रदान करने वाला है। इसलिए यह सनत कुमार चार भाइयों में से कोई एक भाई होंगे, क्योंकि उसके शरीर में से जो तेज निकलता है वह भक्ति का तेज है और इसलिए शीतल है। तो इस तरह सोच ही रहे थे तब तक भगवान एकदम यज्ञशाला के नजदीक पहुंच गए और उसके तेज से हतप्रभ होकर वहां पर जो भी थे वह सब ऋत्विज आचार्य, यहाँ तक कि अग्निदेव भी अपने स्थान से खड़े हो गए। और बलि महाराज बाहर जाकर स्वागत सत्कार करके भगवान को उस ब्राह्मण बालक को अंदर लेकर आए और सुंदर सिंहासन पर बिठाया, उसके चरण धोए, चरणों का प्रक्षालन किया और जो चरणामृत था उसका पान किया और अपने मस्तक के ऊपर धारण किया। सुखदेव जी कहते कि बलि का क्या भाग्य है। तत्पाद सोचम जनकल्म शापहम सधर्म विमूर्ण्य ददात सुमंगलम। तत्पाद सोचम जनकल्म शापहम, भगवान का जो चरणोदक है, चरण धोवन है, वह जनकल्म शापहम संसार के सभी लोगों के पाप को नष्ट कर देता है। साक्षात गंगा जी के रूप में भगवान का चरणोदक संसार भर के पापों को नष्ट कर देता है। वही भगवान का चरणामृत सद्धर्मविद धर्म के मर्मज्ञ बलि महाराज ने मूर्धन्या ददात अपने मस्तक पर धारण किया। जिस चरणोदक को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, यत देव देवो गिरिशचंद्र मौली मूर्ध्न्या दधार पर्याच भक्त्या। जिसको देवताओं के देव गिरिशचंद्र मौली अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं गंगा जी के रूप में, तो मानो प्रश्न हो कि भाई महादेव जी ने गंगा जी को क्यों धारण कर किया, उसको कुछ जरूरत होगी। तो कि नहीं, यह तो देव देव, तो देवताओं के भी देव है, देवताओं को भी किसी बात की कमी नहीं है, तो यह तो देवताओं के भी देव है, तो उसको किस बात की कमी होगी जिससे गंगा जी की जरूरत पड़े। तो कहते ठीक है गिरीश, उसको पानी के लिए शायद गंगा जी को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया होगा। तो कहते नहीं नहीं गिरीश अर्थात वो तो पर्वत के ऊपर रहते और पर्वतों के ऊपर स्वभाव से ही छोटे छोटे नदी नाले झरने बहते ही रहते हैं, तो पानी के लिए भी उसको कुछ गंगा जी की जरूरत नहीं है। तो कहते हाँ, इसलिए उसने गंगा जी को धारण किया कि जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ और वह विष पीने के कारण शिव जी के पूरे शरीर में गर्मी दाह ताप प्रकट हो गया और उस ताप से बचने के लिए उसने गंगा जी को मस्तक पर धारण किया। तो कहते नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, क्यों चंद्रमौली जिसने अपने मस्तक के ऊपर चंद्रमा को धारण किया है, जो चंद्रमा पूरे संसार को शीतलता देता है। हम लोग देखते हैं कि दिन भर में सूर्य के ताप के कारण वातावरण इतना गर्म हो जाता है और पृथ्वी भी इतनी तप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है और चंद्रमा उदित होता है तो अपने शीतल किरणों से सभी गर्मी को चंद्रमा शोष लेते हैं और एकदम वातावरण शीतल हो जाता है। और छोटे शहरों में और गांव में हम देखते हैं कि लोग खुले आंगन में और टेरेस में अगासी में सोते हैं गर्मी के दिनों में, तो चंद्रमा के शीतल किरणों के कारण 9, 10, 11 बजते बजते इतना वातावरण शीतल ठंडा हो जाता है कि गोदड़ा उठवा पड़े। इतनी शीतलता चंद्रमा जो देने वाला है पूरे संसार को, उस चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है, तो उसको शीतलता के लिए कुछ गंगा जी की जरूरत नहीं है। तो फिर उसने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण क्यों किया? तब कहते कि यत देव देव गिरीश चंद्र मौली मूर्जना दधात पर्याच भक्त्या, परम भक्ति के कारण कि यह मेरे इष्ट देव का चरणामृत है, यह मेरे इष्ट देव का चरण प्रक्षालन किया हुआ जल है, ऐसा मानकर परम भक्ति के पूर्वक परम भक्ति के साथ उसने उस चरणोदक को गंगा जी को मस्तक पर धारण किया है। और वही गंगा जी के जल को जिसको भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण किया है, वही जल आज कहते हैं कि धर्मज्ञ भागवत धर्म के मर्म को जानने वाले बलि महाराज ने अपने मस्तक पर धारण किया है, क्या उसका सौभाग्य होगा। और फिर उसके चरणों में बैठकर बलि महाराज कहते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामहे, हे ब्रह्मन आपका स्वागत है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े योगी तपस्वी और ब्रह्मर्षियों की तपस्या साक्षात शरीर धारण करके आपके रूप में आ गई है, और आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मैंने जीवन में जो भी सत्कर्म किए वह सब मेरे कर्म सफल हो गए, यह पृथ्वी पवित्र हो गई, आज मेरे पितृ सब तर गए, आप यहाँ पर आप जैसे ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे हैं, तो मैं सब प्रकार से धन्य हो गया। अब हे ब्राह्मण देव आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको देखने से ऐसा लगता है कि त्वम अर्थी न, आप कुछ अर्थ अर्थात कुछ याचना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं, ऐसा अनुतर्क मैं अनुमान लगा रहा हूँ। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो बताइए क्या दूँ, गाम जमीन चाहिए आपको, कांचनम सुवर्ण चाहिए, गुणवत धाम अर्थात रहने के लिए सुंदर मकान चाहिए, और वह भी धाम कैसा गुणवत अर्थात फर्नीचर किया हुआ एकदम तैयार, या तो मृष्टम अन्नम भोजन के लिए स्वादिष्ट अन्न चाहिए, या तो कुछ स्वादिष्ट पेय पदार्थ चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है ना ब्राह्मण देव कि आपको शादी करने के लिए छोटी सी कन्या चाहिए, वाह विप्र कन्या छोटी सी कन्या आपके लिए व्यवस्था कर दूं। ग्रामान या तो समृद्ध गांव चाहिए, हाथी घोड़े आपको जो भी चाहिए हे ब्राह्मण देव आप बताइए एक बार मुख से बोलिए। भगवान कुछ बोल नहीं रहे, इतना बोल दिया होता कि भाई मेरे भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं मीरा रोड में मंदिर बना दीजिए, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती भक्तों को। तब भगवान वामन देव कहते हैं कि वचस्तवेतद् जनदेव देव, हे राजन तुम्हारे जो यह वचन है वह सुनृतम बिल्कुल सत्य है, इसमें तुम कुछ कपट पूर्वक नहीं कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। कुलोचितम यह तुम्हारे कुल के भी अनुरूप है, और धर्मयुतम धर्म से संयुक्त है, और यशस्करम यश प्रदान करने वाले है। भगवान चार विशेषण दे रहे कि हे बलि आपके जो वचन है वह सत्य है, आपके कुल के अनुरूप है, धर्म से युक्त है, और यश को बढ़ाने वाले हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में दो लोगों को प्रमाण माना है, सांसारिक वस्तुओं के लिए आपने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रमाण माना है, और पारलौकिक वस्तुओं के लिए अर्थात आध्यात्मिक वस्तुओं में आपने अपने पितामह कुलवृद्ध प्रशांत आपके पितामह प्रहलाद जी को प्रमाण माना है, इसलिए आप ऐसा बोले उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप बहुत सुंदर कह रहे हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि मैं जो भी आपके पास से मांगूंगा वह सब आप मुझे देंगे, लेकिन मुझे अधिक नहीं चाहिए। तस्मात्त्वतो महिम ईषद, ईषद अर्थात थोड़ी सी महिम पृथ्वी चाहिए। हे राजन, मुझे ईषद थोड़ी सी पृथ्वी चाहिए। कितनी? तो कहते पदानी त्रीणी दैत्येन्द्र, हे दैत्यराज तीन पैर भूमि चाहिए, और वह भी सम्मितानी पदा मम, मेरे चरणों से माप कर। अर्थात भगवान छोटे छोटे पैर दिखा कर कह रहे कि बलि महाराज जी यह छोटे छोटे मम पद मेरे पैरों से नाप कर तीन पैर भूमि चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ईश्वर थोड़ा सा चाहिए। और हकीकत भगवान झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उसके लिए यह पृथ्वी थोड़ी है, जिसके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड भरे पड़े हुए हैं, उस भगवान के लिए यह पृथ्वी तो छोटी सी होगी ना। इसलिए कहते ईश्वर थोड़ी सी राजन चाहिए। तब बलि महाराज कहते कि अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति। अरे ब्राह्मण बालक, आप जैसे बालक है ऐसे ही आपकी बुद्धि भी बालक है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वार्थ को नहीं जानते, स्वार्थम प्रति अबुद्धो, आप अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं। और बलि महाराज बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान अपने स्वार्थ को नहीं जानते, वह सिर्फ अपने भक्तों के स्वार्थ को ही जानते हैं, कि मेरे भक्तों का हित कैसे होगा उसी बारे में सोचते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते। इसलिए बलि जी सत्य कह रहे हैं कि त्वम स्वार्थो, तुम अपने स्वार्थ को नहीं जानते हो। अरे तीन पैर भूमि में क्या होगा? आप तीन पैर भूमि, वह भी आपके छोटे छोटे पैर, उसमें आप कहाँ पर घर बनाएंगे, उस झोपड़ी में कहाँ पर आप आसन लगाएंगे, अपनी जप माला रखेंगे, ठाकुर जी को कहाँ पर रखेंगे, अपना दंड छत्र कमंडल ये सब कहाँ पर रखेंगे? और फिर कल जब आपका मन होगा और शादी करेंगे तो छोटी सी ब्राह्मणी आएगी और फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे, और तब जब आपको यह जगह कम हो जाएगी तो आप दूसरे के पास मांगने जाएंगे, और जब दूसरे के पास जाएंगे तो लोग क्या बात करेंगे? किस ब्राह्मण बालक को मांगना नहीं आया लेकिन बलि को देना भी नहीं आया? लोग हमारी निंदा करेंगे। अरे इस त्रिलोक का एकमात्र मैं ईश्वर हूं, त्रिलोक की नाम एकम ईश्वर है, और मेरे पास जीवन में जो एक बार मांगने आता है उसको कहीं पर भी मांगने जाना नहीं पड़ता है आजीवन। इसलिए हे ब्राह्मण, आप कहे तो कुछ और ज्यादा मांग लीजिए, और अगर आपने कसम खा रखी है कि तीन पैर से ज्यादा नहीं लूंगा तो ठीक है, मेरे पास ऐसे बड़े बड़े दैत्य है जो अपने एक पैर में गांव के गांव माप सकते हैं, तो ऐसे दैत्यों के पास आप कहे तो तीन पैर नपवा दूं? तो भगवान कहते नहीं नहीं राजन, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। और हकीकत आप लोग हंसिए मत, भगवान सच कह रहे हैं, क्योंकि जो असंतोषी होते हैं वह अपने लिए मांगने जाते हैं, और जो संतोषी है वह अपने लिए नहीं मांगते, दूसरों के लिए मांगते हैं। भगवान अपने लिए थोड़ा मांगने गए, अपने भक्त के लिए गए हैं, उसके अंदर कुछ स्वार्थ या कामना नहीं है। इसलिए कहते कि हे राजन, अगर तीन पैर भूमि से जो संतुष्ट नहीं होगा उसको तीन लोक का राज्य दे दिया जाए फिर भी वह संतुष्ट नहीं होगा। जिसके अंदर संतोष नहीं है उसको अगर एक गांव दे दिया जाए तो वह शहर प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा, शहर मिल जाए तो राज्य के लिए दौड़ेगा, और राज्य मिल जाए तो देश प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा, और अगर देश भी उसके नाम कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी के लिए वह दौड़ेगा, और पृथ्वी भी उसको दे दी जाए तो फिर स्वर्ग के लिए दौड़ेगा, लेकिन उसकी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी। जिसके अंदर संतोष नहीं है ऐसे व्यक्ति की कामनाओं का कुछ अंत नहीं है, जितनी कामना उसकी पूर्ण होगी उतनी कामना बढ़ती रहेगी, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। जैसे एक रामायण में बहुत सुंदर दृष्टांत इस विषय में दिया है कि जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तो अंतिम समय में जब भगवान रावण के मस्तक को अपने बाण से काट रहे थे तो रावण के मस्तक जैसे ही भगवान काट रहे थे तो एक काटने पर दो हो आ जाते थे, पूरा आकाश भर गया रावण के मस्तक से, और जैसे ही भगवान उसके मस्तक काट रहे तो उससे दुगना वहां पर उसके सिर पर धड़ पर प्रकट हो रहे मस्तक। और लिखा है कि वहां पर रावण के मस्तक भगवान के काटने पर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे व्यक्ति को लाभ होता है तो उससे जितना लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है, ऐसे ही रावण के मस्तक बढ़ रहे थे। और बिल्कुल सबकी अनुभूत बात है कि जैसे जैसे जीवन में लाभ होता है, कई लोग हम देखे हैं और जीवन में भी अनुभव किया है कि जब पहले कुछ भी नहीं था तो बिल्कुल धन का अभाव था, कुछ नहीं था, तब शांति थी और समय भी था, भजन भी होता था। और फिर जब भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत धन संपत्ति हो जाती है तो फिर उसको बढ़ाने में लोभ के कारण व्यक्ति उसमें इतना खुच जाता है कि फिर उसके पास परिवार के लिए समय नहीं है, भजन भक्ति के लिए भी समय नहीं है, कुछ समय नहीं रहता है। जैसे लाभ बढ़ता है जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो ऐसे ही भगवान कह रहे कि हे राजन, जिसके अंदर संतोष नहीं है वह पृथ्वी पर कहीं पर भी चला जाए वह कभी सुखी नहीं हो सकता है, और जिसके पास संतोष है वह कहीं पर भी चला जाए उसके लिए पूरी पृथ्वी सुख और आनंदमयी है। जैसे किसी व्यक्ति के पैरों में उसने मजबूत जूते पहने हुए हैं पैरों में, तो फिर वह व्यक्ति कहीं पर भी चले उसके लिए कोई दुख नहीं है। पैरों में अगर मजबूत जूते हैं तब वह कच्ची सड़क पे चले, पक्की सड़क पर चले, गांव में, शहर में, जंगल में, पानी में, कांटों में, कहीं पर भी चले, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए तो पूरी पृथ्वी एकदम सुख देने वाली है। ऐसे ही जिसके अंदर संतोष नाम का धन है उसके लिए पूरी पृथ्वी, वह कहीं पर भी जाएगा सब जगह उसके लिए सुखी सुख है, और जिसके अंदर संतोष नहीं है वह संसार की कामनाओं से जलता रहेगा और दौड़ता रहेगा। एक बार एक वैष्णव बता रहे थे इस बात पे कि गांव में एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था और उसके ठीक बगल में एक ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण बिल्कुल निर्धन थे लेकिन फिर भी एकदम शांति से संतोष पूर्वक सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वह सेठ जिसके पास इतना धन था जिसकी कोई गिनती नहीं थी और फिर भी दिन रात परिश्रम करने में लगे हुए थे, तो एक दिन उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर कहा कि क्या पैसों के भूत बन के धन के पीछे भाग रहे हो, अरे ये जीवन ऐसे ही गवा दोगे, दिन रात मेहनत करने में धन की कमी है, अभी थोड़ा शांति लो, अरे ब्राह्मण देव को देखो हमारे पास में रहते, आज खाया है कल खाने की कुछ व्यवस्था नहीं है, कल भोजन मिलेगा कि नहीं, फिर भी देखे कितने शांत है, कितने आनंद से रह रहे हैं, और तुम्हारे पास पीढ़ियों तक चले इतना धन है लेकिन अच्छी तरह से खाते भी नहीं हो और सोते भी नहीं हो, क्या साथ में लेकर जाओगे। और अपनी पत्नी की बात को सुनकर वह सेठ कहता है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसका तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें दुख है यह ब्राह्मण कितना शांति से बैठा है, कुछ नहीं है फिर भी उसके जीवन में कितनी शांति और कितना संतोष है। तो वह सेठ बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या किया, कहता है कि अब देखता हूं कैसे शांति से जीता है। तो रात्रि के समय एक बैग के अंदर 90 रुपया डालकर वो बैग उस ब्राह्मण के आंगन में डाल दी, और जब सुबह में वह ब्राह्मण देवता जगे और देखा खोल के, अरे इसमें तो धन है, तो गिनने लगे, गिनते गिनते 90 रुपया तो ब्राह्मण सोचने लगे कि अरे जीवन में कभी धन नहीं देखा था, एक साथ 90 रुपया, अब अगर 10 रुपया मिल जाए तो 100 रुपया हो जाएगा, तो फिर कोई टेंशन नहीं, कभी भी काम आ सकते हैं। तो ब्राह्मण देव ने 10 रुपये प्राप्त करने के लिए काम भी करना चालू किया, कुछ ढूंढा होगा, और मेहनत करते करते पैसे 100 रुपये से बढ़ गए, 125 रुपये हो गए। तब सोचते कि अगर 200 रुपया हो जाए तब तो कुछ टेंशन ही नहीं है, तो फिर और मेहनत करना बढ़ा दिया। और जो 200 रुपये हो गए तो सोचने लगे जीवन में एक बार 500 रुपया हो जाए तो बैंक में रख कर शांति से जीऊंगा, और मेहनत बढ़ा दी, और फिर तो उसमें ही वो ब्राह्मण देव झुलस गए तो पूरा जीवन। और वह सेठ कहता है अपनी पत्नी से, कहती थी ना कितनी शांति है, देख कहां पर शांति है, वो तो फकर थे तब तक संतोष था, शांति थी, लेकिन धन मिल गया तो अब शांति नहीं रही। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हे महाराज, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तस्मात् त्रीणि पदान्येव, मुझे सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए। और हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे लोग हुए। अब भगवान बता रहे कि अगर किसी के पास मांगना हो, डोनेशन लेने के लिए जाना हो, तो कैसे बात करनी चाहिए। तो बलि महाराज को कह रहे हैं कि हे राजन, आपके कुल में एक से बड़े एक वीर हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर और पराक्रमी योद्धा हुए जिसने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, और दानी भी आपके कुल में ऐसे ऐसे हुए हैं कि उसके पास से कोई मांगने आया हो और खाली हाथ वापस गया हो, ऐसा आज तक देखा नहीं है। और आपके पितामह प्रहलाद, जिसका यश, जिसके भक्ति के कारण उसका यश चंद्रमा की तरह पूरे असुर कुल को उजागर कर रहा है, सब ओर से, और आपके पिता जिसकी ब्राह्मणों के चरणों में इतनी निष्ठा थी कि साक्षात इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन महाराज, बलि जी के पिता विरोचन महाराज के पास मांगने के लिए आए थे, और विरोचन महाराज जानते थे कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, यह इंद्रदेव है, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण के वेश को देखते हुए, उस ब्राह्मण के वस्त्र को देखते हुए उसने अपना आयुष्य दान में दे दिया। हे राजन, ऐसे ऐसे दानवीर और ब्राह्मण भक्त आपके कुल में प्रकट हुए हैं, और पराक्रमी आपके परदादा हिण्याक्ष युद्ध करने के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमे, लेकिन अपने मुकाबले का कोई उसे मिला नहीं, तो अंत में भगवान विष्णु के साथ उसने युद्ध किया, और विष्णु ने बड़ी मुश्किली से उसको युद्ध में जीत तो लिया, लेकिन आज भी जब हिण्याक्ष का पराक्रम याद करते हैं तो भगवान विष्णु भी अपने को हारा हुआ समझते हैं। ऐसे ऐसे वीर हे राजन आपके कुल में प्रकट हुए हैं, इसलिए आप जो यह वचन कह रहे हैं वो बिल्कुल आपके कुल से उचित है, लेकिन मुझे तुम सिर्फ 3 पैर भूमि दो, मुझे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तब कहते, जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी कहते कि इत्युक्त सहसन, जब वामन देव ने ज्यादा नहीं मांगा तो बलि महाराज हंस रहे, और प्रतिगृह्यताम वामनाय महिम दातुम जग्राह जल भाजन, अपने हाथ में संकल्प करने के लिए जल का पात्र बलि महाराज ने हाथ में ले लिया, और जब हाथ में उस जल पात्र को लेकर संकल्प करते हुए देखा, और तब तक शुक्राचार्य जी ने श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु है, तब वह बलि महाराज को संबोधित करते हुए कहते कि एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रवि, ये बलि ये कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, एष साक्षात भगवान विष्णु रवि, अविनाशी भगवान विष्णु है। और एष बलि न कहकर क्या कह रहे, एष विरोचने, ये विरोचन के पुत्र, अर्थात शुक्राचार्य जी का भाव है कि जो तुम्हारे पिता ने जो गलती की थी वही गलती तुम भी करने जा रहे हो। तुम्हारे पिता के पास इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में आए थे, जानते हुए भी उसने अपना आयुष्य दे दिया, इसी प्रकार यह विष्णु भी तुम्हारे पास ब्राह्मण के रूप में आए हैं। और क्यों आए हैं, कश्यपाद अदितिर जातो देवानाम कार्य साधक, अरे यह कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए है और देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं। और यह तुम्हारे स्थान को एष ते स्थानम ऐश्वर्यम, तुम्हारे ऐश्वर्य को श्रियम, तुम्हारे संपत्ति को तेज को, और श्रुतम यश, तुम्हारे विश्व विख्यात यश को छिंज तुम्हारे पास से ले लेंगे। और अपने लिए ले तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास से छीनकर तुम्हारे शत्रु शक्राय दास्यति, इंद्र को दे देंगे, तुम्हारा सब लेकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को सब कुछ दे देंगे, माया मानव को हरिह, ये माया से ऐसे ब्राह्मण बालक बने हुए ये कोई सामान्य नहीं, ये साक्षात हरि है, इसलिए तुम इसको तीन पैर भूमि मत दो। और अगर तुम दोगे फिर भी अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह एक चरण में सब नीचे के लोग नाप लेंगे और दूसरे चरण में ऊपर के सब लोग नाप लेंगे, और फिर तीसरा चरण देने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी, तो वैसे भी तुमको नरक में जाना पड़ेगा। देने के बाद भी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम मत दो। तब बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मैंने इसको वचन दिया है। अरे तूने वचन दिया है, लेकिन जानता है इस संसार में व्यक्ति को अपने धन को पांच भाग में विभाजित करना चाहिए, धर्माय, अपने धन से एक भाग धर्म के लिए खर्च करना चाहिए, और एक भाग यश से, व्यक्ति को अपना यश कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ संसार में समाज में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे यश बढ़े, तो एक भाग यश के लिए रखना चाहिए, और अर्थाय एक भाग अर्थ अर्थात व्यापार करने के लिए, धन के बिना व्यापार कैसे होगा, इसलिए अपना बिजनेस चलाने के लिए एक भाग रखना चाहिए, और कामाय एक भाग को अपनी कामना पूर्ण करने के लिए रखना चाहिए, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, घर बनाना, गाड़ियाँ, और जो भी अपनी निज इच्छा है उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक भाग रखना चाहिए, और पांचवा भाग स्वजनाय च, अपने स्वजन परिवार वालों के लिए, पत्नी पुत्र इत्यादि के लिए एक भाग रखना चाहिए। इस प्रकार पंचदा विभजन वित्तम इहा अमूत्रम च मोदते, इस प्रकार जो व्यक्ति अपने धन को पांच भाग में बांट देता है वह इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है। तो हे बलि, अपने धन में से जो एक भाग धर्म के लिए है, अर्थात 20% धन जो धर्म के लिए है, वह तू उसको दान कर दे तो ठीक है, लेकिन तू तो सब देना चाहता है। अरे बलि सीख, तू सीख, इस बंबई वालों से सीख, जो अपने धन में से 5% धन भी गिरधारी जी की सेवा में नहीं लगा रहे, और तुझे मैं 20% धन देने का कह रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा है, तो सीख इन लोगों से, सब देने पर तुला हुआ है और देने पर भी तुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए तू इस संकल्प मत कर। तब फिर से बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव लेकिन मैंने इसको वचन दे दिया, अब झूठ कैसे बोलूं। तब शुक्राचार्य जी कहते कि देख बलि, कई बात ऐसी है उसमें अगर झूठ बोला जाए तो उस झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। कहते कि कौन कौन सी जगह पर अगर व्यक्ति झूठ बोले तो वह झूठ नहीं माना जाता है। स्त्रीशु नर्म, अपनी पत्नी के साथ मजाक करते हुए अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले तो वह झूठ नहीं माना जाता है। मान लो अगर पत्नी कुछ डिमांड करे आभूषण की या तो कपड़ा कपड़े के लिए और फिर सोचे कि अगर इसको ना कहेंगे तो झगड़ा होगा या तो रिहाइश है, तो थोड़े समय के लिए संकट टालने के लिए अगर उसको कह दिया ठीक है ले दूंगा और बाद में उसको नहीं ले दिया तो उसमें पाप नहीं लग जाएगा। घर में शांति रखने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। फिर विवाह है, अगर किसी स्त्री का विवाह हो रहा है तो उसकी प्रशंसा में अगर दो शब्द ज्यादा बोल दिए जाए तो उसमें भी कुछ पाप नहीं है। वृत्त्यर्थ अपने व्यापार में कुछ झूठ बोला जाए थोड़ा सा जरूरत के अनुसार, और वह भी कभी कभी, ऐसा नहीं कि झूठ बोलना जरूरी बता रहे तो बोलना ही चाहिए, नहीं, अपने व्यापार के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना चाहिए पड़े तो उसमें भी झूठ नहीं माना जाएगा। और प्राण संकट, व्यक्ति के प्राण जब संकट में है और तब कुछ प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वह भी झूठ नहीं है। और गो ब्राह्मण अर्थे, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जाए तो वह भी झूठ झूठ नहीं है। अगर हमारे सत्य बोलने से गाय को नुकसान होता है, गाय का वध होता है, तो वह हमारा सत्य ही पाप हो जाएगा। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं सदन कसाई की कथा कि सत्य बोलने के कारण ही उसके हाथ कट गए क्योंकि उस कसाई ने गाय को मार दिया। तो इसलिए कहते कि गो ब्राह्मण अर्थे, गाय और ब्राह्मण के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं है। और हिंसायाम, हिंसा रोकने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो वह भी दोष युक्त नहीं है। इसलिए हे बलि, अगर तुम सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा व्यापार और तुम्हारा परिवार सब संकट में आ जाएगा। इसलिए तुम इसको ना कह दो कि मैं नहीं दूंगा। तब बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आप सच कह रहे हैं कि सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृह मेधिनाम, आप सत्य बता रहे हैं कि यह गृहस्थों का धर्म है कि उसको अपने धन को 5 भाग में बांटना चाहिए और कभी कभी समय आने पर अमुक बात में झूठ बोलना भी चाहिए। लेकिन मैं झूठ कैसे बोलूं? जब मैं सोचता हूँ प्रतिश्रुत्य ददामिति प्रहलादी कितवो यथा, जब मैं सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, प्रहलादी, प्रहलाद का वंशज हूँ, तो कैसे मैं झूठ बोलूं? आपकी बात तो सही है, आपके शिष्य होने के नाते अगर बोल दूं, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मेरे पूर्वज कौन है, मैं किसका पौत्र हूँ, प्रहलाद का, तब सोचता हूँ नहीं नहीं मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ प्रहलाद का होकर, प्रहलादी। बहुत सुंदर बलि महाराज का यह वाक्य है, भक्तों को इसके ऊपर विचार करने योग्य है कि जीवन में कुछ भी कार्य करते समय व्यक्ति को एक बार सोच लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा कुल क्या है, मेरे पिता कौन है, मेरे पूर्वज कौन है, और सबसे पहले भक्तों के लिए कि मैं प्रभुपाद जी का हूँ, अहम प्रभुपादीय। तो प्रभुपाद जी का होकर क्या मुझे यह कार्य करना शोभा देता है? जैसे बलि महाराज सोच रहे ऐसे ही कुछ भी कार्य करने से पहले भक्तों को एक बार स्मरण कर लेना चाहिए कि अहम प्रभुपादीय, मैं प्रभुपाद का हूँ। तो इस प्रकार बलि महाराज ने जब ना कह दिया तो शुक्राचार्य जी एकदम क्रोधित हो गए, एवं अश्रद्धितम शिष्येन। इस प्रकार जिस जब बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो एकदम क्रोधित हो गए और कहते कि हे बलि, मैं तेरा गुरु हूं और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा और श्राप दे दूंगा। बलि महाराज कहते कि गुरुदेव आप स्वतंत्र है, आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं, मैं आपको त्याग सकता हूँ लेकिन भगवान को नहीं त्याग सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि यह विष्णु है जिसकी प्रसन्नता के लिए हमने यह सब यज्ञ इत्यादि कार्य किए हैं, और फिर भी आप अगर उसको देने के लिए ना बोल रहे हैं तो मैं आपको त्याग सकता हूँ लेकिन भगवान को दूंगा नहीं, सब कुछ दे दूंगा। और बलि महाराज ने आदर्श प्रस्तापित किया कि अगर गुरु भी भक्ति से भगवान से प्रतिकूल करने वाली बात कहे तो गुरु की बात को भी नहीं मानना चाहिए। जब ईश्वरपुरी जी के शिष्य और उसके सेवक गोविंद चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए और वहाँ पर जाकर कहा कि प्रभु मैं गुरुदेव के आदेश से आया हूँ और उसने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है यहाँ पर, तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी से पूछते हैं कि क्या किया जाए इस विषय में। ये गोविंद गुरु का सेवक है और गुरु का सेवक होने के नाते हमारे लिए गुरु तुल्य पूजनीय है और इसके पास से सेवा लेना यह भी उचित बात नहीं है और गुरु का आदेश है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि प्रभु गुरु का आदेश सर्वथा पालनीय है, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए अवश्य। एक बात है, अगर भक्ति से विरुद्ध कुछ गुरु का आदेश है तब उसका पालन नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और इसमें गोविंद आपकी सेवा करे तो उसमें कुछ भक्ति मार्ग का लोप नहीं है, इसलिए इसको रख लीजिए। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपनी सेवा के लिए रख लिया। तो कहने का कि परम भागवत द्वादश भागवतों में बलि महाराज का नाम इसलिए है कि भगवान से प्रतिकूल करने वाले गुरु के आदेश को भी त्याग दिया, और वह भी कोई सामान्य नहीं, जिस गुरु ने उसको जीवन दिया था। बलि महाराज देवासुर संग्राम में उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से बलि महाराज को जीवित किया, और जीवित किया उतना ही नहीं, उसके पास यज्ञ इत्यादि करवा कर उसे स्वर्ग का राज्य दिया। आज बलि महाराज के पास जो भी है वह सब शुक्राचार्य जी की कृपा से है, लेकिन फिर भी आज भगवान की बात आई तो अपने गुरु को भी त्याग दिया, उसकी बात भी नहीं मानी। और हाथ में जल का पात्र ले लिया, और जैसे जल पात्र संकल्प करने के लिए हाथ में लिया तो आकाश में से देवता और सिद्ध ऋषि मुनि जो भी खड़े थे वो बलि की इस कार्य की प्रशंसा करते हुए पुष्प की वृष्टि करने लगे कि धन्य है यह बलि जो ऐसा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और जैसे संकल्प लिया तो भगवान का वह जो स्वरूप उसके सामने छोटे से वामन रूप में खड़े थे, तम वामनम रूपम अवर्धतात अद्भुतम, और वह अद्भुत स्वरूप देखते देखते बढ़ने लगा और इतना विशाल हो गया भगवान का वह स्वरूप के तीनों लोग उसके अंदर आ गए, सभी जीव खम अर्थात आकाश पृथ्वी दिशा पाताल स्वर्ग समुद्र नदियां पर्वत जो भी थे वो सब, और जितने भी जीव है मनुष्य पशु पक्षी देवता यक्ष किन्नर सब के सब भगवान के शरीर के अंदर आ गए। इतना विस्तार अपना बढ़ा लिया और एक चरण में भगवान ने नीचे के सभी लोग को नाप लिया, और दूसरा चरण जब ऊपर गया तो ब्रह्मलोक में जब भगवान का वह चरण पहुंचा तो उसके चरण में से वामन भगवान के चरण के नख में से जो प्रकाश निकल रहा था उस प्रकाश से कहते हैं कि हतस्वधाम ज्योति, ब्रह्मा जी के लोक का प्रकाश ब्रह्मा जी के लोक का तेज सब नष्ट हो गया। भगवान के चरण के नख में से जो ज्योत्सना प्रकाश निकलता है जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति कहकर जिसका ध्यान करते हैं, उसी प्रकाश के कारण ब्रह्मा जी के लोक का सब तेज नष्ट हो गया और वहां पर जो भी थे लिखा है कि सभी वेद पुराण तीर्थ यम नियम ये सब ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्म लोक में मूर्तिमान शरीर धारण करके रहते हैं, और उन सब लोगों ने मिलकर भगवान के चरणों की पूजा की और फिर वहां से वह चरण ऊपर गया तो भगवान के दाएं चरण के नख के स्पर्श से ब्रह्मांड का जो आवरण था वह फट गया। इस प्राकृत ब्रह्मांड और इसके बाहर जो दिव्य जगत है वैकुंठ परम व्योम उसके बीच में जो आवरण है वह भगवान के नख के स्पर्श से फट गया, और उसके ऊपर जो वीरजा कारणोदक कारण समुद्र का जल था वह वहां से नीचे आया और वामन भगवान के चरणों को धोते धोते वह नीचे आया और वही गंगा जी के रूप में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक बह रहा है। तो भगवान वामन देव की कृपा से आज हम लोगों के पास गंगा जी है। और कैसी गंगा जी? तो कहते कि तीनों लोकों के ताप को और पाप को नष्ट करने वाले। श्रीमद् भागवत ने एक प्रश्न उठाया है कि भगवान कौन, भगवान किसको कहेंगे? तब सूत जी कहते अथापि यत्पादन खाव सृष्ट जगत विरिंचोप्यहतारणम्भ शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत पदार्थ। जिस भगवान के चरण कमलों में से निकली हुई गंगा शेषम पुनाति तीनों लोक को उसके लोकपालों के सहित पवित्र करती है। सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के सहित वहां पर रहने वाले सभी लोग को पवित्र करती है। कैलाश पर जाकर शिव जी के साथ वहां पर रहने वाले भूत प्रेत सभी को पवित्र करती है। स्वर्ग लोक में जाकर सभी देवताओं को पवित्र करती है। पृथ्वी लोक में पाताल लोक पर जहां पर भी जाती है सब जगह पर उसके लोकपालों के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसी गंगा जिसके चरणों में से निकली है वह भगवान मुकुंद को छोड़कर को नाम लोके भगवत पदार्थ। कहते कि बताइए किसके लिए यह भगवत पद है, यह भगवान शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाए? को नाम लोके भगवत पदार्थ अन्यतमो मुकुंदा, वह मुक्तिदाता भगवान को छोड़कर भगवान शब्द किसी के लिए नहीं है, ऐसा सूत जी का मत है। तो यही गंगा जी जो भगवान के वामन देव के चरण के स्पर्श से प्रकट हुई और बाद में सब कुछ नाप लेने के बाद वामन देव फिर बलि महाराज के सामने अपने मूल रूप में उपस्थित हो गए। और तब तक जो वहां पर दैत्य सब थे असुर, वो सब देख रहे कि अरे यह विष्णु कितना कपटी है, हमारे स्वामी के साथ कितना अन्याय कर रहा है। हमारे स्वामी तो सत्यव्रत है और स्वभाव के सरल है और उस पर भी यज्ञ में दीक्षित है, इसलिए वह कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है स्वामी की रक्षा करना, इसलिए उठाओ अस्त्र शस्त्र और इस विष्णु को भगाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सब दैत्यों ने अपने अपने आयुध अपने हाथों में ले लिए, अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लिए और प्रहार करने के लिए भगवान को मारने के लिए दौड़े। तब तक जो भगवान के पार्षद वहां पर खड़े थे वह सब हंसने लगे और हंसते हंसते अपने अपने आयुध अस्त्र शस्त्र को हाथ में धारण कर लिए। कौन कौन पार्षद थे तो उसका भी वर्णन करते कि नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतत त्रिराग अर्थात गरुड़ जी जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत इत्यादि जो भगवान के पार्षद वहां पर खड़े थे सब ने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करके उन सब दैत्यों को भगा दिया। और वो लोग भी प्रहार सहन न करने के कारण पाताल में भाग गए। और यहाँ पे भगवान का संकेत पाकर गरुड़ जी ने बलि महाराज को बांध दिया और इस दृश्य को देखकर सब लोग वहां पर थे हाहाकार करने लगे, ऋषि मुनि और देवता लोग भी कि ये क्या हो रहा है, ये बलि के साथ अन्याय हो रहा है, अरे इस बेचारे ने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी इसे क्यों बांधा जा रहा है, इसको क्यों कष्ट दिया जा रहा है, ऐसे सभी लोगों में हाहाकार मच गया। और भगवान बलि को क्रोध पूर्वक कहते हैं हे बलि तूने मुझे वचन दिया था कि तीन पैर भूमि दूंगा और तेरे देखते देखते मैंने एक पैर में नीचे के सभी लोग नाप लिए और दूसरे पैर में ऊपर के सभी लोग नाप लिए, अब तीसरा चरण रखने के लिए भूमि दे नहीं तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा, अपना वचन पूर्ण कर। अरे कितना अहंकारी और अभिमानी हो गया है कि तुम्हारे गुरु तुम्हें बता रहे थे कि तू नहीं दे सकेगा लेकिन गुरु की बात भी तूने मानी नहीं, अब दे तीसरा पैर नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। और तब भगवान की बात को सुनकर बलि महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मैंने कोई अपना वचन भी नहीं छोड़ा है और आपके साथ कुछ कपट भी नहीं किया है। आप पहले यह बताइए कि धन बड़ा या धनी, दान बड़ा या दानी। दान को बड़ा मानेंगे या तो दान देने वाले को बड़ा मानेंगे? भगवान कहते हो तो स्वाभाविक है, धन से बड़ा धनी होता है और दान से बड़ा दानी होता है। तो ठीक है प्रभु, आपने दो चरणों में सब कुछ नाप लिया, लेकिन मैं अभी बाकी हूँ। मेरा सब ले लिया लेकिन मैं बाकी हूँ, इसलिए पदम तृतीयम कुरु शिष्मि मैं निजम। हे प्रभु, अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर आप रखिए। और आपने प्रभु यह जो मुझे दंड दिया है उसके लिए मुझे कुछ लज्जा या शर्म नहीं है, क्योंकि आप जैसे पूजनीय लोगों के द्वारा जीव को जो दंड मिलता है वह उसका कल्याण करने वाला ही होता है। इसलिए प्रभु मुझे बंधने का कोई दुख नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। और हकीकत में देखा जाए तो हम असुरों के लिए आप जैसा हमारा कोई हितेशी नहीं है। भले बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि आप हमारे असुरों के शत्रु है, लेकिन नहीं नहीं, परोक्ष दृष्टि से आप हम असुरों के गुरु है। अन्यथा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को अनेक अनेक जन्म साधना करने के बाद जो गति प्राप्त होती है वही गति आप हम असुरों को देते हैं। प्रभु आपसे बड़ा हम असुरों का कौन हितेशी है? और असुरों का नहीं, इस पूरे संसार में जितने भी जीव है उन सभी जीवों के लिए आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा उसका हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और इसी बात को सोचकर मेरे दादा प्रहलाद जी ने इस संसार को छोड़कर आपके अभय चरणों का आश्रय लिया है। मेरे दादा प्रहलाद जी ने सोचा कि इस संसार में क्या है, चार बात को छोड़कर इस संसार को त्याग दिया और आपके चरणों के गुण को देखकर उसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। कहते कि मेरे दादा प्रहलाद जी का यह मत था कि किम आत्मा अनेन जहाति यो अंततः, अरे इस शरीर से क्या प्रयोजन जो अंत में छोड़ देने वाला है। कितनी भी इसकी सेवा की जाए, कितना भी इसका ख्याल रखा जाए, इसके भोग के लिए कितने भी साधन अर्जन किए जाए, बड़े बड़े बंगले बनाए जाए, महंगी महंगी गाड़ियां लिया जाए और भी कुछ भी किया जाए, लेकिन अंत में यह शरीर साथ छोड़ देने वाला है, तो फिर इस शरीर से क्या प्रयोजन है। और किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्यु, और जिसको हम स्वजन मानते हैं लेकिन हकीकत में कौन है? रिक्त हारे दस्यु, हमारे धन को हरण करने वाले दस्यु अर्थात लुटारे हैं। चोर लुटारे तो बंदूक या तो छुरी दिखाकर धन हरण कर लेते हैं, लेकिन ये लोग मीठा मीठा बोलकर मांगकर धन हरण कर लेते हैं। तो ऐसे रिक्त हारे धन को हरण करने वाले स्वार्थी स्वजनों से क्या प्रयोजन। किम जाये या संस्कृति हेत भूतया, और पत्नी उससे भी क्या प्रयोजन है। जो स्त्री में आसक्ति ही संसार में ये जीव का संस्कृति का सबसे बड़ा कारण है। यह जीव जो जन्म मृत्यु रूपी चक्र में फंसा हुआ है उसका सबसे मूल कारण है स्त्री में आसक्ति। तो ऐसी किम जाइया संस्कृति हेतु भूतया, संसार की हेतुभूत इस पत्नी से भी क्या प्रयोजन। और कहते कि मर्तस्य गेहे किम इहा व्यय, और इस मरण धर्म मनुष्य के लिए यह नश्वर घर गाड़ी इत्यादि से क्या प्रयोजन। छूटने ही वाला है, नष्ट ही होने वाला है, तो इसमें क्यों व्यय, आयुष्य व्यय क्यों समय पसार करना। इन चार बातों के ऊपर विचार करके हे प्रभु मेरे दादा मेरे पितामह प्रहलाद जी ने इत्थम स निश्चित्य पिता महा महान अगाध बोधो भवतः पाद पद्मम ध्रुवम प्रपेदे, आपके चरण कमलों को निश्चित रूप से पकड़ लिया जो ही अकुतो भयम, जो संसार के जीवों को बिल्कुल अभय करने वाले हैं। और इस तरह बलि महाराज जब भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, भगवान वामन देव के सामने, तब तक बलि महाराज प्रहलाद महाराज वहां पर पधारे। सुखदेव जी कहते कि तस्य इत्थम भाषण मानस्य, इस प्रकार जब बलि महाराज भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे उसी समय प्रहलाद जी आए। कैसे? तो कहते प्रहलाद भगवत प्रिय है। प्रहलाद जी जो कैसे हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय ऐसे प्रहलाद जी आजगाम कुरुश्रेष्ठ है, कुरुश्रेष्ठ परीक्षित। उसी समय प्रहलाद जी वहां पर आ गए, जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से तारागण को सुशोभित करता है, ऐसे ही उस असुर लोक को सुशोभित करने वाले प्रहलाद जी वहां पर आए। और जब प्रहलाद जी को देखा अपने पितामह को, तो बलि महाराज आज हर रोज की तरह हर रोज अपने पितामह का जैसे स्वागत सत्कार करते थे, लेकिन आज वरुण पाश में बंधे होने के कारण अपने पिताजी का, अपने पितामह का उस प्रकार आदर स्वागत नहीं कर पाए। न उपजहार पूर्ववत, पहले की तरह इस तरह नहीं स्वागत कर पाए, तो सिर्फ ननाम मूर्जना अपना मस्तक झुकाकर मन से ही प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया और अश्रु विलोल लोचन, आंख में आंसू भरे थे और सगृढ़ लज्जा के कारण मस्तक नीचा कर लिया था, और ऐसे ही हाथ जोड़कर बलि महाराज खड़े हैं। और प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा, भगवान के सामने दृष्टि की, तो सबसे पहले उस सुंदर मधुर झांकी को देखकर भूमि ननाम पृथ्वी पर पड़ के प्रहलाद जी ने दंडवत प्रणाम किया और फिर उठकर भगवान को बहुत सुंदर कहते कि हे प्रभु, त्वयेव दत्तम पदम इंद्रम ऊर्जितम। हे प्रभु, इस बलि को यह पद आपने ही दिया था, यह इंद्र का पद बलि को किसने दिया था? त्वयेव, आपने ही दिया था। और तदेव अद्य तथेव शोभनम, और आज आप ले रहे हैं तो उतनी शोभा हो रही, जितना देते समय आपका देना जितना सुंदर था उतना ही सुंदर आपका लेना भी है। कहते कि तथेव शोभनम, आपका लेना भी उसी प्रकार शोभा है, आपकी कृपा ही है। जिस प्रकार एक माँ अपने भूखे बच्चे को भोजन देती है, उसके ऊपर दया करके भूखे बच्चे को भोजन देना, यह माता की एक कृपा है उस बच्चे के ऊपर। लेकिन वही बच्चा जब बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसे भोजन करने के लिए मना कहते हैं, तब वही माता अपने बच्चे के सामने से भोजन की थाली छीन लेती है, तो वह भी उस माँ की कृपा ही है। उसका भोजन देना भी कृपा है और उसके पास से छीन लेना भी कृपा है। इसी तरह हे प्रभु, आपका इस इंद्र को, बलि को इंद्र का आसन देना भी आपकी कृपा थी, और जब इसको इंद्रासन प्राप्त करने के कारण ज्वर हो गया, बीमार हो गया, अहंकार रूप इसको बीमारी हो गई, तो आपने इसके पास से यह राज्य छीन लिया, इसलिए मैं इसको दुख नहीं मानता हूँ, यह आपकी शोभा है। मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रह, हे प्रभु आपका यही सबसे बड़ा अनुग्रह इसके ऊपर है कि यह अभिमान के कारण अगर इसका, इसके पास से आप छीनते नहीं तो इसका पतन हो जाता। और इस प्रकार ब्रह्मा जी जब तक भगवान से प्रार्थना कर रहे थे प्रहलाद जी, तब तक ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ के बीच में ही कहते हैं कि भूत भावन भूतेश देव देव जगन्नाथ। हे भूत भावन, हे देवेश, हे जगन्नाथ, मुंचेनम नायम अर्हति निग्रहम, आप इसको छोड़ दीजिए, अरे यह दंड के योग्य नहीं है। इस संसार में कोई जीव आपके चरणों में थोड़ा सा भी जल अर्पण करता है, आपके लिए थोड़ा सा भी धन देता है, पुष्प या कुछ भी, और कुछ नहीं हो तो दुर्वा अंकुरेरपि, थोड़ा सा दुर्वा का घास अगर आपको अर्पण कर देता है तो वह अपि उत्तमाम गतिम लेभे, ऐसे जीव को भी आप उत्तम गति प्रदान करते हैं, तो असो भजते त्रिलोकिम, इस दानवराज ने तो आपको त्रिलोकी का राज्य आपके चरणों में प्रदान कर दिया है, फिर भी आपने इसको बांधा है, ये किसी प्रकार से योग्य नहीं है। कथम आर्तिम रुच्छेत, इसलिए हे प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए। मानो ब्रह्मा जी बलि महाराज की ओर से वकालत कर रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज ने इतनी बड़ी फीस दी है उसको वकालत करने की, एडवांस में क्या फी जानते हो? भगवान के चरणों तक को प्राप्त करने के लिए, एक बिंदु प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज तरस रहे थे, लेकिन आज बलि महाराज की कृपा से पूरा चरणोदक पूरा गंगा पूरी गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों में है। तो इतना बड़ा जो फीस मिला है एक बूंद के लिए तरस रहे थे लेकिन पूरी गंगा जी उसको मिल गई कमंडल में। इसलिए आज बलि महाराज की ओर से ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जीव थोड़ा सा भी आपके चरणों में अर्पण कर देता है उसको आप उत्तम गति प्रदान करते हैं। तो इस बेचारे बलि ने अपना सब कुछ आपको दे दिया, इसलिए यह किसी भी प्रकार से सजा के योग्य नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं जानता हूँ और आप आठ मस्तक से देखते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं, आप बाह्य दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि मैंने बलि को बांधा, लेकिन थोड़ा अंतर्मुख होकर देखिए, अंदर की दृष्टि से देखिए तो आप जान पाएंगे कि मैं कितना प्रयास करने पर भी इस बलि को नहीं बांध पाया और इस बलि ने बिना रस्सी के ही मुझे प्रेम के धागे में बांध लिया। इसलिए अंदर की दृष्टि से देखिए ब्रह्मा जी, और हे ब्रह्मा जी आप देखिए, मैं यही संसार को दिखाना चाहता था कि मेरे भक्त में कितना धैर्य होता है, अरे इस बलि को अपने सत्य से विचलित करने के लिए कितना प्रयास किया गया, उसके स्वजनों ने उसका त्याग कर दिया, गुरु ने उसका त्याग कर दिया और मैंने भी उसको धमकाया बांधा और छल पूर्वक अनेक वचन कहे, लेकिन फिर भी यह बलि अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। इसलिए अब मैं इसको ऐसा स्थान दूंगा जिसके लिए प्रार्थी तो अमरे रपि, देवता भी जिस लोक को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा सुतल लोक का राज्य मैं इसे दूंगा जहां पर न आदि है न व्याधि है न मृत्यु है न जरा है, कुछ भी कष्ट नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, और जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से किया है और वहाँ पे इतना ऐश्वर्य और इतने भोगों की साधन सामग्री है कि देवता भी हमेशा उस सुतल लोक को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना तरसते हैं, ऐसा सुतल लोक मैं उसको दूंगा। और जब अगला मन्वंतर आएगा, यह जो मन्वंतर चल रहा है कौन सा, वेवस्वत मन्वंतर, और इसके बाद में जो आएगा सावणी मन्वंतर, उस मन्वंतर में इस बलि को मैं इंद्र बनाऊंगा और उसकी रक्षा मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। इतना कहकर भगवान बलि महाराज से कहते कि हे बलि, आप जाइए अपने परिवार और पुत्रों के साथ सुतल लोक में जाइए और वहां से सुखपूर्वक रहिए। और साथ में कहते कि पुत्र प्रहलाद भद्रम ते, हे पुत्र तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम भी अपने स्वजनों के साथ सुतल लोक में जाओ और जरा भी दुखी नहीं होना, क्योंकि वहां पर मैं नित्य तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम्हें नित्य मेरा दर्शन होगा। इस प्रकार समझाकर भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक में प्रहलाद जी के समेत भेज दिया। और इधर दो मिनट, मैं जानता हूँ आप सब लोग सुबह से भूखे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रसंग बाकी है, दो मिनट का थोड़ा सा नहीं साहब, ऐसा नहीं समझिए कि प्रभु जी आधा घंटा खींचेंगे, प्रभु जी को भी भूख लगी है। तो जब बलि महाराज चले गए तो यहाँ पर भगवान वामन देव शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि हे भृगुवर्य, आपके शिष्य का जो यह यज्ञ अपूर्ण है आप उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना, इसलिए यह बलि का जो यज्ञ है उसको आप पूर्ण कीजिए। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि प्रभु, जिस यज्ञ में या तो जिस किसी सत्कर्म में सिर्फ आपकी पूजा हो जाए तब वह सत्कर्म पूर्ण हुआ माना जाता है, सिर्फ आपके पूजन से। तो इस यज्ञ में तो आप साक्षात यहाँ पर पधारे हैं, तो मेरे शिष्य या बलि का यह कर्म अधूरा अपूर्ण कैसे रह सकता है। और हे प्रभु, यहाँ पे यज्ञ मंडप में एक से एक बड़े विद्वान ऋत्विज आचार्य और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब विद्यमान है, और हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी कुछ अनुष्ठान करते हैं, भूख पूजन या सत्कर्म या तो यज्ञ इत्यादि जो भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। कितना भी ख्याल रखने के बाद, कितना भी प्रयास करने के बाद भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। मंत्र तस तंत्र तस छिद्रम, या तो मंत्र में त्रुटि रह जाती है, तंत्र में देश अर्थात स्थान में कोई त्रुटि रह जाती है, समय में कुछ त्रुटि रह जाती है, मुहूर्त में चौघड़िये में, या तो पूजन में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, और नहीं तो जो पूजन के लिए या तो यज्ञ के लिए जो वस्तु का प्रयोग हुआ है उन वस्तुओं में कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। लेकिन उन त्रुटि का निवारण करने के लिए हे प्रभु कहते कि मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालहार वस्तु भी सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे प्रभु, इन सब त्रुटियों का निवारण करने के लिए, यह सब छिद्रों को नष्ट करने के लिए सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, आपके नाम का संकीर्तन किया जाता है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के अंत में अपनी त्रुटियों का निवारण करने के लिए आपके नाम का संकीर्तन करते हैं, तो आपके नाम में इतना प्रभाव है, तो फिर आप खुद इस मेरे शिष्य के यज्ञ में पधारे हैं, तो इस यज्ञ में त्रुटि कैसे रह सकती है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तथापि वदतो भूमन करिष्यामि अनुशासनम, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। क्यों? तो कहते कि एतत् श्रेयः परम पुंसा यत् तवाज्ञानुपालनम्। मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण, सबसे बड़ा हित उसी में है कि तव आज्ञा अनुपालनम्, आपकी आज्ञा का पालन हो। आपने भगवत गीता में जो जो आज्ञा दी है उसका पालन करना, इसी में मनुष्य का सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ा कल्याण है। तो इतना कहकर फिर शुक्राचार्य जी ने उस यज्ञ को पूर्ण किया, और इधर देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी इत्यादि सबके साथ गए, और सभी देवताओं ने मिलकर इंद्र के सिंहासन पर, इंद्र के पद पर भगवान वामन देव का अभिषेक किया। बोलो वामन देव भगवान की जय। तो अद्भुत भगवान का यह अवतार, तीन कार्य हुए मुख्य रूप से। बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य मिला, देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिला, और हम लोगों को क्या मिला? कथा तो मिली, गंगा जी मिली। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक इतना श्रवण किया, और समय भी 10 मिनट ज्यादा ले लिया, तो इसमें जो कुछ त्रुटि रह गई इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। वामन देव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की मिटाय गौर प्रेमानंदे। 2 मिनट बैठिए सब।
हरे कृष्णा 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 हरे।